स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 17 तारीख और दिन शुक्रवार। जिम्बाब्वे में नजरबंद राष्ट्रपति मुगाबे का इस्तीफा से इनकार, विपक्ष ने कहा कुर्सी छोड़ें।
इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जिम्बाब्वे मिस्टर रॉबर्ट मुगाबे मस्ट रिजाइन।
आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ मोदी सरकार के खिलाफ आज होगा सड़कों पर। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर घाटी में हालात बिगड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार है जिम्मेदार।
वो जो डुअल की थ्योरी है ये उसी का नतीजा, आज पढ़े लिखे नौजवान इनके खिलाफ खड़े हो गए। कातिल के बाजू में कितना जोर है ये हम सब देखना चाहते, करने जोर, ये थमने वाली आग नहीं है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, रजनीश कुमार से। जिम्बाब्वे में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की सैन्य प्रमुख और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तस्वीरें जारी हुई हैं। बुधवार को सेना ने सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया था और राष्ट्रपति मुगाबे को नज़रबंद कर दिया था। तस्वीरों में दिख रहा है कि मुगाबे मुस्कुरा रहे हैं। सेना के हाथ में सत्ता आने के बाद से मुगाबे पर इस्तीफे का दबाव है, लेकिन खबर है कि मुगाबे ने इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। इसराइल के सेना प्रमुख ने कहा है कि मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उनका देश सऊदी अरब से सहयोग के लिए तैयार है। सऊदी के सरकारी अखबार एलाफ से इसराइली सेना प्रमुख ने कहा कि ईरान का सामना करने के लिए इसराइल सऊदी से सूचना साझा करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसराइल का लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह पर हमले का कोई इरादा नहीं है, जो कि ईरान का रणनीतिक सहयोगी है। इसराइल और सऊदी के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध अब तक नहीं हैं। सीरिया में जारी रासायनिक हथियारों से हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच के मामले में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में रूस ने वीटो किया है। यह 10वीं बार है जब रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अपने सहयोगी के लिए वीटो का इस्तेमाल किया। यूएन में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि इस मामले में अमरीकी मसौदे का व्यापक समर्थन था, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया। निकी हेली ने कहा कि वीटो से साबित होता है कि रूस ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सीरियाई सरकार ने रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया था। रूसी राजदूत ने इस मामले में अमरीका की आपत्ति को खारिज कर दिया है। निकी हेली ने कहा,
Russia has acted to obstruct these investigations many times.
रूस ने इस जांच को रोकने की कोशिश कई बार की है, लेकिन आज हमें गहरा झटका लगा है। रूस ने संयुक्त जांच की प्रक्रिया को नष्ट कर दिया है। इस जांच के लिए सुरक्षा परिषद में हमें व्यापक समर्थन मिला था। हमलावरों की पहचान करने की हमारी क्षमता को खत्म कर रूस ने भविष्य में हमले रोकने की हमारी क्षमता को कमजोर किया है। ये थे यूएन में अमरीकी राजदूत निकी हेली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में पुरातत्ववेताओं का कहना है कि उन्हें सोए हुए मुद्रा में बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति के अवशेष मिले हैं। इनका मानना है कि यह मूर्ति 1700 साल पुरानी है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम के संरक्षित इलाके खैबर पख्तूनख्वा में यह मूर्ति मिली है। पत्थर की यह मूर्ति 14 मीटर लंबी है। पाकिस्तान का यह इलाका कभी प्राचीन बौद्ध सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। फ्रांस के विदेश मंत्री सऊदी अरब में लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के फ्रांस पहुंचने की उम्मीद जताई थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल अल जुबैर ने एक बार फिर से दोहराया है कि साद हरीरी रियाद में अपने मन से हैं और जब भी मन करे वो यहाँ से जा सकते हैं। पूरे मामले पर लेबनान के राष्ट्रपति माइकल अयून ने कहा,
हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं उसे आप सभी जानते हैं। हमें लग रहा है कि आज समाधान की एक राह खुली है। प्रधानमंत्री साद हरीरी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है और वो फ्रांस जाएंगे। हमें उम्मीद है कि वर्तमान संकट जल्द ही खत्म होगा। ये थे लेबनान के राष्ट्रपति माइकल अयून के शब्द। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी काबुल में एक आत्मघाती हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर पुलिस ऑफिसर हैं। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 17 तारीख और दिन है शुक्रवार। इस वक्त हो चुके हैं हिंदुस्तान में 6:34:45। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ मोबाइल फोन और अपने फेसबुक पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। जिम्बाब्वे में राजनीतिक संकट जारी है। सेना और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। सत्ता पर अब हालांकि सेना का कब्जा है, लेकिन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बेहतर यही है कि रॉबर्ट मुगाबे कुर्सी छोड़ दें। जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। जिम्बाब्वे में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए रजनीश कुमार से।
इसी हफ्ते बुधवार को जिम्बाब्वे की सेना ने 93 साल के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को नजरबंद कर सत्ता अपने नियंत्रण में ले लिया था। सेना के इस कदम के बाद से देश में अनिश्चय की स्थिति है। राष्ट्रपति मुगाबे पर इस्तीफे का दबाव है, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। जिम्बाब्वे के विपक्षी नेता मॉर्गन स्वांगिराई का कहना है कि जनहित में मुगाबे को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा,
इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जिम्बाब्वे मिस्टर रॉबर्ट मुगाबे मस्ट रिजाइन स्टेप डाउन इमीडिएटली इन लाइन विद द नेशनल।
जिम्बाब्वे की जनता के हित में रॉबर्ट मुगाबे को किसी भी सूरत में इस्तीफा दे देना चाहिए। मुगाबे की विरासत और उनके योगदान को पूरा सम्मान मिलेगा। देश में व्यापक सुधार की जरूरत है। हमें निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराना चाहिए। हम इसी रास्ते से देश में शांति और स्थिरता को स्थापित कर सकते हैं। मॉर्गन स्वांगिराई के शब्द। सेना के इस कदम के बाद गतिरोध खत्म करने की भी कोशिश जारी है। रॉबर्ट मुगाबे की सैन्य प्रमुख और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तस्वीरें जारी हुई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि मुगाबे मुस्कुरा रहे हैं। बीबीसी अफ्रीका के संवाददाता का कहना है कि सत्ता पर सेना के नियंत्रण के बावजूद राष्ट्रपति के चेहरे पर कोई परेशानी के भाव नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुगाबे ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें सत्ता से विदा करने के समझौते में प्रगति हुई है। एक बात यह भी सामने आ रही है कि मुगाबे की जगह बर्खास्त उपराष्ट्रपति एमर्सन ले सकते हैं। जिम्बाब्वे पिछले एक दशक से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में बेरोजगारी का अनुमान अलग अलग है, लेकिन देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन का कहना है कि साल की शुरुआत में बेरोजगारी की दर 90% तक थी। जिम्बाब्वे को अपनी करेंसी छोड़ विदेशी कैश अपनाने पर मजबूर होना पड़ा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिम्बाब्वे नकदी की समस्या से जूझ रहा था। सरकार ने अपना डॉलर जारी किया था जिसे बॉन्ड नोट कहा गया, लेकिन बड़ी तेजी से ये बेकार साबित होते गए। जिम्बाब्वे में चीन का कारोबार बहुत बड़ा है। चीन जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। इस गतिरोध पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, जिम्बाब्वे में जारी राजनीतिक उठापटक को हम करीब से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ शांति और स्थिरता जल्दी कायम हो। हमें उम्मीद है कि जिम्बाब्वे अपना आंतरिक मसला जल्द ही सुलझा लेगा। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। लोगों को लगता है कि मुगाबे के जाने से देश में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। सेना ने टीवी पर दिए बयान में कहा है कि सत्ता पर उसका नियंत्रण अस्थायी रूप से है। सेना का कहना है कि ऐसा अपराधियों को खत्म करने के लिए किया गया है, न कि मुगाबे को निशाना बनाने के लिए।
ये थे रजनीश कुमार। और अब भारत से जुड़ी खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ आज संसद भवन तक एक रैली निकालने वाला है, जिसमें देश भर के संगठन के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मजदूर संघ का कहना है कि वो मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ यह मार्च निकालेगा। बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का संबंध भी आरएसएस से है। आखिर में ऐसा क्यों है कि सरकार और आरएसएस के संगठन में नीतियों को लेकर मतभेद हो रहा है, यही जानने के लिए हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजेश उपाध्याय से बात की। उनका कहना था,
मजदूरों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनी जिसके कारण सब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट आ गई है, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में है। पिछले 40 साल से स्कीम्स वर्कर के नाम से आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, ऐसे करके लोग काम कर रहे हैं। तो ये काम तो करते हैं, वर्कर हैं, लेकिन टेक्निकली कानूनी इनको वर्कमैन का दर्जा नहीं मिलता, जिसके कारण ना इनको मिनिमम वेज मिलता है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है। सारा डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर का आता है, पब्लिक सेक्टर वर्सेज प्राइवेट सेक्टर शुरू हो गया है। तो जब तक दोनों को सेम ऑब्लिगेशंस नहीं होता प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर को, तब तक दोनों की परफॉर्मेंस को ठीक से इवेल्युएट नहीं किया जा सकता। ऐसे सब सवाल हैं जो संबंध रखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ। इसलिए भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि देश की अर्थव्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाया जाए।
तो वो पैराडाइम शिफ्ट किस तरीके के होने चाहिए जो आप कह रहे हैं?
अभी ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की पॉलिसी है, इसमें ह्यूमन सेंटर में नहीं है। ह्यूमन सेंटर पॉलिसी आनी चाहिए, ईज ऑफ लिविंग सेंटर में आना चाहिए। अभी ईज ऑफ डूइंग को लेकर के चर्चा रखी है, तो व्यक्ति को केंद्र में ला करके पॉलिसी अगर डिजाइन होगी तो उसका परिणाम अलग प्रकार का आएगा। आज बिजनेस में प्रगति हो रही है, वेल्थ जनरेट हो रही है, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी ये लगातार बढ़ती जा रही है।
हाल फिलहाल में विपक्ष भी कहता रहा है सरकार की नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियां बेरोजगारी की दर बढ़ने के लिए और विकास कम होने के लिए भी ये सारी चीजें जिम्मेदार रही है। आप इसको किस तरीके से मानते हैं?
देखिए, पॉलिटिकल लोग इसको किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जब इधर होते हैं तो कुछ बात करते हैं, उधर होते हैं तो कुछ बात करते हैं। दे आर नॉट ऑनेस्ट टू एनालाइज, वो ईमानदार नहीं है ऐसी सारी समीक्षा करने के लिए। डिमोनिटाइजेशन और जीएसटी के बारे में दुनिया भर के जाने माने इकोनॉमिस्ट भी एक मत नहीं है, और भारतीय मजदूर संघ का ऐसा मत है कि इसके बारे में कोई अंतिम राय बनाना भी बड़ी जल्दबाजी होगी।
आरएसएस से संबंध आपका भी है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी आरएसएस से संबंध रखती है, तो सरकार की नीतियों को आप क्यों नहीं बेहतर मानते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो आप सेम है।
वास्तव में देखिए, सरकार का काम और ट्रेड यूनियन का काम, दोनों के काम में बहुत फर्क रहता है, इसलिए दोनों एक ही दिशा में कभी जा ही नहीं सकते। हम मजदूर हितों के बारे में देखने वाले, विचार करने वाले लोग हैं। सरकार की कुल नीतियां जो बनती हैं उससे मजदूर हित कितना प्रभावित होता है, किस रूप में प्रभावित होता है, उसको देखना, उसके एनालिसिस करना, उसके बारे में अपनी कार्य योजना तैयार करना, ये हमारा काम है और हम उसको बखूबी करते हैं।
ये थे भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजेश उपाध्याय, जिनसे बात कर रहे थे हमारे साथी मोहम्मद शाहिद। और अब चलते हैं पंजाब। पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या के आरोप में मोगा जिले की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 5 लोगों में एक शख्स स्कॉटलैंड के जगतार सिंह जोहल बताए जाते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ने को लेकर ब्रिटेन में एक कैंपेन शुरू हो चुका है। उनके मामले को लेकर आज मोगा की अदालत में सुनवाई होगी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मोगा, जहां हमारे साथ ही मौजूद हैं अरविंद छाबड़ा, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या होना है आज बताएं।
जी देखिए इकबाल, आज जो है 3 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है जगतार सिंह जोहल का। 3 दिन पहले उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, तो आज जो उनके वकील हैं वो ये कोशिश करेंगे कि उनका पुलिस रिमांड खत्म हो जाए, वो अपनी दलीलें देंगे। दूसरी तरफ पुलिस ये बताएगी, प्रोसिक्यूशन ये बताएगी कि क्या उनकी पुलिस रिमांड में और जरूरत है, क्या उनसे रिकवरीज और होनी बाकी हैं। दूसरी तरफ आज पिछली बार अदालत में जौहल के जो वकील हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि उनका पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है, तो उस पे उन्होंने ये कहा था कि उनका मेडिकल कराया जाए। तो देखते हैं कि जज साहब आज इस पर क्या आदेश सुनाते हैं, या कुछ आदेश सुनाते भी हैं या नहीं सुनाते।
जी, तो अरविंद, ये जो जगतार सिंह जोहल साहब हैं, ये क्या भारतीय मूल के ब्रितानी नागरिक हैं, क्या हैं ये, इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान को लेकर सही जानकारी क्या है?
जी देखिए, ये स्कॉटिश नेशनल हैं और यहाँ पर पंजाब में वो अपनी शादी के लिए, अपने विवाह के लिए आए थे। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर आरोप ये लगा कि उन्होंने ये जो पंजाब में पिछले दिनों हिंदू नेताओं की हत्याएं हुई उनमें उनका हाथ था, उनको उनके लिए जो पैसे का इंतजाम किया था वो उसमें कहीं ना कहीं इनका हाथ दिखाया है पुलिस ने। हालांकि इसके बारे में क्या सबूत है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन काफी ज्यादा ये मामला काफी गरमाया हुआ है।
पंजाब में भी काफी बयानबाजी देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनको छोड़ा जाना चाहिए, जबकि कांग्रेस जिनकी सरकार है उनका ये कहना है कि ये सब बेसलेस बातें हैं और पूरे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं उनके खिलाफ, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
बहुत शुक्रिया आपका अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शताब्दी वर्ष। कुछ लोग उन्हें भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं तो कुछ उन्हें निरंकुश शासक। इतिहास किस तरह से याद करता है इंदिरा गांधी को, इस शनिवार 18 नवंबर को बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो बीबीसी इंडिया बोल में हमें आपके ईमेल्स, आपके खत, आपके टेलीफोन का इंतज़ार रहेगा। और अब बात करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत प्रशासित कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसको लेकर जाहिर है काफ़ी विवाद पैदा हुआ। हमारे साथी माजिद जहांगीर ने श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से बात की और उनसे ये भी पूछा कि हाल ही में कश्मीरी युवाओं के चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर आप क्या कहते हैं, सुनिए ये पूरी बातचीत।
कह रहे हैं 70 साल से क्या किया उनने उसको लेने के लिए, 4 जंगें जब हुई लाइन वहीं पे खड़ी है, बल्कि जो हिस्सा इनने हासिल भी किया था हाजी पीर का, वो भी रशिया में जब प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के गए थे और वहाँ सदर पाकिस्तान के थे अयूब खान साहब और शास्त्री साहब यहाँ से गए थे, वहाँ वो दे देना पड़ा वापस पाकिस्तान को। अगर वो हमारा हिस्सा था और आपने उसको हासिल कर लिया था, वापस क्यों देना पड़ा? तो कॉन्ट्रोवर्सी इसमें क्या है? उनके पास है वो सब हिस्सा, हमारे पास ये हिस्सा है।
डॉक्टर साहब, आपका एक और बयान कि आपने भारत से कहा कि आप ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो लोग आज़ादी मांगेंगे, यहाँ तो
ये मैंने आज नहीं कहा।
हाँ हाँ भाई, एक बयान
मैंने पहले भी कहा है।
हाँ,
क्या मतलब आज़ादी? क्या है आज़ादी? आप लैंड लॉक्ड हैं, एक तरफ से चीन के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, हिंदुस्तान के पास एटम बम है, हमारे पास है क्या? हमारे पास छुरी भी नहीं है, तो आज़ादी किससे करेंगे?
डॉक्टर साहब, आपने कल कहा उरी में कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, आपने कहा कि उनके पास एटम बम है, भारत के पास भी तो एटम बम है, क्या कहेंगे आप?
मैं तो दोनों चीज़ों का कहा, मैंने यही चीज़ वहीं भी कहा है कि दोनों के पास एटम बम है, इस्तेमाल कर नहीं सकते, करोड़ों यहाँ मर जाएंगे, करोड़ों वहाँ मर जाएंगे, ये लाइन वहीं पर खड़ी रहेगी। 4 जंगों के बाद भी अगर ये लाइन वहीं पे खड़ी है तो आगे कौन सी जंग लड़के ये लाइन चेंज कर सकेंगे? नहीं होगी, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो सही बात है जो हमारे सामने है। अब वो समझने की कोशिश न करें तो ये इनका इनकी बात है।
तो बिहार के कोर्ट ने आदेश दिए हैं आपके खिलाफ इस बयान को लेकर FIR काटने की? तो
दिए हैं, कई कोर्टों में बयान आते हैं, कई कोर्टों में FIR आते हैं। अब मैं उनसे डर जाऊँ और मैं अपने मौकफ से हट जाऊँ, वो फारूक अब्दुल्ला नहीं है।
डॉक्टर साहब, अक्सर ये तासुर यहाँ पे है कि आप कभी कभी ऐसे बयानात भी देते हैं कि आप खबरों में रहना चाहते हैं,
ये जो कहने वाले हैं ना, ये उनसे पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से क्यों पूछ रहे हैं? जो आपसे ये कहते हैं उनसे ज़रा पूछिए ना, किस बिना पे कहते हैं?
डॉक्टर साहब, ऑटोनॉमी की करारदाद तो आपकी जमात ने असम्बली में पास की थी, उस वक्त दिल्ली ने उसको नहीं माना, तो आपकी जमात ने
देखिए सवाल क्यों नहीं माना, क्या आप कहते हैं क्यों नहीं माना? फिर वो डिस्कशंस क्या हुए जो पंची के साथ हुए?
तो वो ऑटोनॉमी
जो सुनिए, पंची के साथ हुए, उसके बाद ये जो हैं अपने पंची थे, पंची के बाद जेटली साहब आए, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत हट गई, वो इलेक्शन में वापस नहीं आए, मगर डिस्कशन तो हुआ, आज भी तो उनके सामने ये डिस्कशन हो रहा है।
तो फिर उसका क्या हुआ फिर?
क्यों नहीं होगा, एक ना एक दिन होगा, क्यों नहीं होगा? हिंदुस्तान ने भी अंग्रेज़ों से लड़ाई, 200 साल लड़ी, एक दिन तो आज़ाद हुआ, हमारी बात भी आ जाएगी उनके पास।
डॉक्टर साहब, भारत सरकार ने हाल ही में मज़ाकरात कार को कश्मीर पर जो है नियुक्त किया उनको, तो आपने पहले ही सरद मेहरी दिखाई उस पर और मज़ाकरात कार जो है वो चले भी गए, हुर्रियत से बात नहीं हुई, तो हुर्रियत के बगैर बातचीत के कुछ माने हैं भी, तो हुर्रियत को ऑफिशियली इनवाइट करना चाहिए भारत सरकार?
ऑफिशियली मैं नहीं जानता हूँ, ये वो जाने और अपना काम जाने।
नहीं, आप एक अपोजिशन,
मैंने हमने हर वक्त ये कहा है कि दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट, they are part of the stakeholders. अगर वो स्टेक होल्डर थे क्यों नहीं बात करो, ठीक है, एक कहेगा आज़ादी, एक कहेगा पाकिस्तान, एक कहेगा खुद मुख्तारी, सुन तो लो क्या जाता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि कश्मीर के जो मकामी लड़के हैं वो मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो रहे हैं, कोई फुटबॉलर है, कोई इंजीनियर है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है जो एक नई,
इसके लिए दिल्ली जिम्मेवार है, इसके लिए वो जो डुअल की थ्योरी है कि और इनको दबाओ, फौज इस्तेमाल करो, पुलिस इस्तेमाल करो, CRPF इस्तेमाल करो और जितना कश्मीरी को दबाओगे उससे हम जीत जाएंगे, ये उसी का नतीजा है कि आज पढ़े लिखे नौजवान इनके खिलाफ खड़े हो गए। कातिल के बाजू में कितना जोर है ये हम सब देखना चाहते हैं, कर लें जोर, ये थमने वाली आग नहीं है।
डॉक्टर साहब, भारत सरकार कह रही है कि नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी के वाकयात रुक गए, क्या आप भारत सरकार की इस बात से सहमत हैं?
अगर वो सहमत होता तो मुझे ये बताइए, ये जो जवान आजकल इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या वो नोटबंदी से हो गए? क्या ये समझते हैं कि ये तहरीक बंद हो गई क्योंकि इन्हें नोटबंदी की, इन्हें GST लगाया उससे हो गया? ये उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ अंधे रहते हैं, बहरे रहते हैं।
ये उस दुनिया में रह रहे हैं जहां अंधे रहते हैं, बहरे रहते हैं। ये गंभीर आरोप थे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का, जिनसे बात कर रहे थे हमारे साथी माजिद जहांगीर। और चलते हैं गुजरात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं 9 और 14 तारीख को। इसी मद्देनज़र BBC संवाददाताओं की एक टीम इस समय गुजरात में है। हमारी कोशिश है कि हम अपने श्रोताओं को BBC संवाददाताओं के अनुभव गुजरात डायरी के रूप में सुनवाएं। इसी कड़ी में आज पेश है हमारे साथी कुलदीप मिश्र की भेजी डायरी।
चिड़ियों की खुसर फुसर और नवंबर की खुनक, हवा में सरसराती नीम की डालियां और बोरे पर बैठाकर परोसा गया बाजरे के आटे का रोटला। जितने में आटे की 4 रोटियां बने उतने में वह 1 बनता है। ये गुजरात के बनासकांठा ज़िले का सरकारी गोड़िया गांव था जहां एक किसान के यहां दोपहर का भोजन हुआ। मैंने उनसे पूछा कि रोटला पचाना आसान होता है या मुश्किल, तो जवाब मिला पचाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन पचा लें तो पेट के लिए अच्छा है। बनासकांठा आलू की खेती के मामले में अग्रणी ज़िला है, लेकिन इस साल आलू के दामों में रही भारी मंदी ने किसानों में एक निराशा पैदा की है। पड़ोस की लाखड़े तहसील के डेरा गांव गया तो कुछ किसान न बिक पाए आलुओं की बोरियों पर बैठे हुए मिले। उन्हें इस बार आलू 2 रुपये किलो तक भी बेचना पड़ा है। पटेल समाज के इन किसानों में से ज़्यादातर ने माना कि आलू पर उन्हें सरकार से सहयोग अपेक्षित था, इसके बावजूद सरकार बदलने को लेकर उनमें एक गजब की अनिच्छा दिखी। ऐसा ही हुआ था जब 6 रोज पहले मैं अहमदाबाद के 5 कुआं सिंधी बाजार में था। व्यापारियों ने GST को कड़े शब्दों में और कुछ भावनात्मक लापरवाही से भी खरी खोटी सुनाई थी कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे आंसू फूट रहे हैं इत्यादि। समस्याग्रस्त व्यक्ति भावावेश में वैसे भी कभी कभी 4 का 14 कर ही जाता है, लेकिन बात जब एक कदम बढ़कर राजनीतिक पसंद पर अटकी तो वही व्यापारी मुझे अतिरिक्त सावधान नजर आए। राजनीति का कोई अध्येता आकर यह समझे कि GST के सख्त विरोधी ये व्यापारी खुले तौर पर भाजपा की आलोचना से क्यों बचते रहे। कुछ ने कहा कि बाजार के प्रेसिडेंट को बुलवा लीजिए, वे बोलेंगे तो सभी बोलेंगे। उनके स्वरों का सार यही था कि सारा गुस्सा GST से है, भाजपा से नहीं, क्योंकि काम भाजपा ही करवाती है। मोदी जी अपने हैं, उनसे ही लड़कर अपना काम करवा सकते हैं, और कांग्रेस कौन सा GST वापस ले लेगी। गुजरात में बीते 6 दिनों से हूँ। भाजपा के पुराने समर्थक तबकों में नीतिगत नाराजगियों के कुछ स्वर तो दिखते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लेकिन मोदी जी अच्छे हैं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। जो दूसरी पार्टियों के वफादार वोटर हैं वे तो करते ही हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन वे तबके जो शुरू से भाजपा के वफादार समर्थक रहे, असंतोष के बावजूद अपने स्वर मध्यम किए हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है जहां कैमरा और माइक देखकर लोग हमसे पूछो का भाव चेहरे पर लिए खींचे चले आते हों और फिर सरकार की निकृष्टतम शब्दों में आलोचना कर जाते हों। ये गुजरात है, रोटला पचाना आसान नहीं है।
कुलदीप मिश्र की खूबसूरत आवाज और लफ्जों की जादूगरी। नवंबर की इस हल्की सर्दी की सुबह में इससे बेहतर आपको मैं भला क्या सुनवा सकता हूँ। लेकिन आगे भी सुनिए, अखबारों की समीक्षा करेंगे रजनीश कुमार जी। बताएं रजनीश, क्या कहते हैं आपके अखबार?
आज एक दिलचस्प खबर है इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पे, जिसमें भारत सरकार के जो खेल मंत्री हैं राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि चाहते थे कि इस साल जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो राजस्थान उसकी मेज़बानी करे, लेकिन दुर्भाग्य से जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इनकार कर दिया है मेज़बानी करने से। और जबकि राजवर्धन सिंह राठौर जयपुर से ही सांसद भी हैं,
तब पर भी नहीं हो रहा,
नहीं हो पाया। और एक दूसरी खबर है कि अब पद्मावती को लेकर जो विवाद है वो थम नहीं रहा है। करणी सिन्हा ने यहाँ तक कहा है कि दीपिका पादुकोण की नाक काटने तक की धमकी दे दी है, तो इसे लेकर विवाद बढ़ गया है और दीपिका पादुकोण की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पर शशि थरूर ने कमेंट किया है कि जो आज जांबाज बनने का दिखावा कर रहे हैं, जब ब्रिटिश आए थे तो घरों में छुप गए थे। और एक दिल्ली सरकार की खबर है, दिल्ली सरकार अब घरों में फोन कॉल के आधार पर आपके घर में सर्विस पहुंचाएगी, सेवा पहुंचाएगी। जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो आप एक फ़ोन कीजिए, वो घर तक आपको सेवा मुहैया कराएगी। इसके लिए आपको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
ये तो बहुत अच्छी बात है, आउटसोर्सिंग होगी
बेशक। और एक दैनिक भास्कर की हम खबर जो लीड खबर लगी है उसमें है कि ग्रेटर नोएडा में कार घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें बीजेपी नेता और दो गनर की मौत हुई है। बचाने वाले की कोशिश में कार डिवाइडर से टकरा पलटी और चपेट में आने से एक छात्रा की भी जान चली गई है, तो एक दुखद खबर है। और एक खबर यह है कि सरकार, जिसे कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो हवा ख़राब हो रही है वो पराली जलने से हो रही है, तो एनटीपीसी ने कहा है कि अब किसानों से वो पराली 5500 रुपये प्रति टन खरीदेगी।
जी बहुत शुक्रिया रजनीश आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर क्रिकेट के मैदान से। कोलकाता के ईडन गार्डन में कल यानी 16 नवंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन था। मौसम खराब होने के कारण सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाला मुकाबला दोपहर करीब 2 बजे टॉस के बाद शुरू हो पाया, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम 11 ओवरों में 3 विकेट गंवाकर 17 रन बना पाई, जहां केएल राहुल शून्य पर और शिखर धवन 8 रन बनाने के बाद श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंग लकमल की गेंद का शिकार हुए, तो वही विराट कोहली सुरंग लकमल की गेंद पर LBW हो गए और 11 गेंदें खेलने के बाद शून्य पर वो भी आउट हो गए। आज भारत बनाम श्रीलंका के पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन है, जहाँ चित्तेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे भारत के लिए बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। अब आपको लेकर चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर। चीन में खेले जा रहे चाइना ओपन सुपर सीरीज में कल भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीन की हनयू को राउंड 2 में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पीवी सिंधु ने हनयू को 21-15, 21-13 से मात दी। जहां पीवी सिंधु जीत का स्वाद चखने में कामयाब रही, तो वहीं HS प्रणय और साइना नेहवाल को कल हार का सामना करना पड़ा। राउंड 2 के मुकाबले में साइना नेहवाल को जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची ने हराया, तो पुरुष वर्ग में HS प्रणय को हांगकांग के खिलाड़ी चेग यूई ली ने धूल चटाई। आज चाइना ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की गाओ फेंजी के साथ होगा।
और चलते चलते सुन लेते हैं एक दफा फिर प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। जिम्बाब्वे में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। बुधवार को सैन्य प्रमुख और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी गतिरोध कायम है। इसराइल के सेना प्रमुख ने कहा है कि मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उनका देश सऊदी अरब से सहयोग के लिए तैयार है। सीरिया में रासायनिक हथियारों से हमले की अंतर्राष्ट्रीय जाँच के मामले में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में रूस ने वीटो किया है। यह 10वीं बार है जब रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अपने सहयोगी के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में पुरातत्ववेताओं का कहना है कि उन्हें सोए हुए मुद्रा में बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति के अवशेष मिले हैं। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे, कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, और जहां पर इंदिरा गांधी पर विशेष बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिल सकता है। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।